उनकी तस्वीर आप सभी जानते हैं। कुरान बेहतरीन कहता है कि जमाने की कसम इंसान तमाम नुकसान और घाटे में असर का एक मतलब जमाना होता है। ये कसम कब खाई जाती है, कोई अहम बात है कब खाई जाती है, और कसम किसकी खाई जाती है, कोई खास सही कोई खास चीज हो उसकी खाई जाती है, कोई खास बात हो तब खाई जाती है। बिल्कुल खुदा ने तीन कसम खाए और जमाने की कसम खाए तो तफसीरकारों ने खुलासा लिखा है कि तो जमाना का मतलब एक मतलब तमाम जमाना भी है। आप तमाम जमाना का नाम सुनते तो एक मतलब ये भी है और वो खास चीज एक मतलब तफसीर कारों ने खुलासा दे लिखा है तो वो असर दुनिया में कौन सा असर का खास है याद रखने के काबिल है, चर्चा करने के काबिल है, इबादत करने के काबिल है, जो देश में आशीर्वादी असर है, यानी खुदा इतनी अहम कसम खाकर कर ये कह रहा है, कसम खाकर कह रहा है, खुदा को कसम खाए पर भी हमें मानना पड़े, खुदा कह रहा है कि जमाना नुकसान और घाटे से गुजर रहा है, पालने वाला जो कहने का देता है वो मान दिए थे, वो जमाना है हमारे घर के लड़की बार लड़के बाजू से लड़के लाइट लड़की बिजली लड़के पानी पोते में दूध से मांगना पड़ता था, ये तो काम चलाना पड़ता था, ये काम करते पैदल पैदल सफर, ये तो खतरे के सफर, ये यूनिवर्सिटी करती स्कूल करती कॉलेज करती ये विकास करता ये पेंशन करती आश्रम पैसन में कहा करते हैं, ये हम पूरी दुनिया की नकल न उतारे तो हम ही रहते हैं, समाज विकट को उतारे या न उतारे
Thank you. पूरा हो बढ़िया पूछ लेंगे कोई कम ना साधन कर सके तो आपसे पूछते क्या हो गया इसमें, तो आपने कहे की तो एक मर्तबा यहाँ कुरान के एक लेख आ गई अपनी करके शरीयत बदल गई जी, शरीयत बिल्कुल नहीं बदली, शरीयत कैसे बदले वो तो पांच उन्हें अजी नदी शरीयत लेके आगे पूछी है, शरीयत पहचाने वाले और नदी के आने वाले वे आदम के मीना के मीसा के मरीसा अनुरा वो पांच नदी जो शरीयत लेके आगे पूछी कही वक्त के साथ थोड़ी तब्दीली होती है नहीं होती होती है, बच्चा दो बरस का है आपने देश निकाला कहाँ तक चलेगा, फिर बच्चा नहीं बदला देश बदला नहीं पड़ेगा है, शरीयत नहीं बदली वक्त के साथ कुछ बदलना पड़ता है, डॉक्टर के पास गए थे दिखारे कहाँ आप कुछ लेना कल गए कहाँ हल्का है कोई नीच ले लेना, तीसरे दिन कहे कहाँ आदत की तरह खाना नॉर्मल हो, तो अब डॉक्टर नहीं बदला हम बदल रहे हैं है, यानी शरीयत बदलने वाली चीज नहीं है शरीयत तो हमने समझा नहीं, यानी यक नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें समझाई वो शरीयत जो आदम से खत्म तक रही और फिर नबी ने कहा शरीयत पहचान लगा तो जदीद वाले दिन शरीयत मुकम्मल कर दी गई, कुरान के जरिए शरीयत पा जाती है हम घबराते हैं, शरीयत क्या है दीन एक बड़ा सर्कल दायरा है और शरीयत एक छोटा सर्कल जिसका एहसान एक छोटा सर्कल है, क्यों समझ लीजिए एक मजहब सिखा इस्लाम अगर बात समझ में आ जाए ग्राहकान मजहब को समझना, देखो दुनिया में कोई भी छोटी छोटी इबादत हुई है मुस्लिम है कैमरा है पेपर है रेडियो है टीवी है वीडियो है कितनी बातें दुनिया में, तो वो सबके साथ एक प्रकार होती है उसे ऑपरेट करना जाने वो उनका सही यूज कर सकता है, मुझे तो नहीं कर सकते मस्जिद सुनना हो तो सोचना पड़ता है कहीं वीडियो खराब न कर दे समझा, मगर जो ऑपरेट करना चाहे वो जाने वो उनका सही यूज कर सकता है, तो छोटी छोटी मशीन के साथ एक एक किताब आती है अकेले एक एक किताब, मगर कभी रेडियो खराब हुआ तो हम किताब के बेच कर नहीं सही कर सकते, टीवी खराब हुआ तो उनकी किताब को नहीं सही कर सकते, उनके इंजीनियर को रिपेयर करने वाले के पास ले जाना पड़ता है या बुलाना पड़ता है, जब छोटी मशीन हम नहीं सही कर सकते छोटी किताब से पढ़कर हम नहीं समझ सकते कि भला अल्लाह की किताब हम कैसे समझेंगे, हम अपने आप फैसला करें इतनी बड़ी शरीयत को हम कैसे समझेंगे, जिस कंपनी की मशीन होगी उसी कंपनी की किताब होगी, जहाँ से इस्लाम आया है जिस कंपनी का समझो कंप्यूटर सबसे बड़ी दुनिया में इजाद हुई है, कितना बड़ा कंप्यूटर अब होने वाला है जो आप सब जानते हैं, मैं आपके सामने क्या जिक्र करूं, मगर ये ऐसी इजाद है किसने इंसानों ने, तो कहने दीजिए कि सबसे बड़ा कोई कंप्यूटर हो तो वो इंसान है, वो ही बनाता है कितने हॉर्स पावर की मशीन जो लोहा पिघाल दे जो लोहे को तोड़ दे, इंसान चाहे तो पहाड़ का सीना चीर कर उसमें रास्ता कर दे, इंसान ने इजाद की है, अगर इंसान चाहे तो समंदर का पेट फाड़ के उसमें टनल बना दे रास्ता कर दे, ये कौन करता है, चांद पर कौन गया इंसान गया, तो हमें कहने दीजिए कि भाई सारे हाउस पावर की सारे मशीनों के लिए कंट्रोल होना चाहिए, एक छोटी सी साइकिल है तो ब्रेक है, एक छोटे स्कूटर है तो उनके लिए ब्रेक है वरना वो बेकार ब्रेक फेल हो गई कार बेकार आपकी, कार है तो उनके लिए ब्रेक है, तो इतने बड़े हाउस पावर जो इतनी बड़ी बड़ी इजादे करे तो कितने हाउस पावर की ये मशीन खुदा ने बनाई है इंसान, तो उसे कंट्रोल करने वाला कोई होना चाहिए, उनके लिए ब्रेक कोई होना चाहिए, तो उनके लिए जो ब्रेक है वही शरीयत है, हम घबराते हैं, हमें क्यों रोकते हैं, हमें क्यों टोकते हैं। ब्रेक अगर इंसान बेकार हो जाएगा तो नीचा न रहेगा। हमने माना इंसान ही सब करता है, इंसान ही मस्जिद बनाने वाला भी इंसान है, उसे बर्बाद करने वाला भी इंसान है ने? तो ये तो न होना चाहिए, इंसान ही सब करता है। यहाँ जिन्नातों ने आकर मलक ने आकर थोड़ी नाकल बनाई है, नाकल बनाने वाला इंसान तो उनका निजाम खराब करने वाला भी इंसान इंसान है। वो चाहे तो आग लगा दे बस्ती उजेर दे, वो चाहे तो फूल बरसाए। वो इंसान है जिसे कोई ध्यान नहीं सकता, ऐसा बड़ा इंसान मगर चिड़िया चहके तो वो फड़क उठते है। ऐसा बड़ा इंसान जिसकी इतनी ताकत है मगर धूल एकाएक उनके सर पे गिरे तो वो चौंक उठते। नाजुक इतना और सख्त इतना, ऐसा अजीब गरीब इंसान कि अल्लाह की तरफ से उसे डिग्री मिली, मैंने तुझे अशरफुल मखलूकात बनाया, तो क्या बेकार छोड़ दिया? अशरफुल मखलूकात बनाकर फख्र का इंसान ये है कि कोई अपनी छोटी सी तिजारत को बेकार नहीं छोड़ता, अपने घर को नहीं छोड़ता, बहुत संभालता है। छोटी झोपड़ी हो या छोटी सी तजारत हो, अल्लाह ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई, क्या छोड़ दी? लाभावित छोड़ दी? जी नहीं, हमारे लिए भी एक हमें राह दिखाने वाला रहनुमा रहेगा, हमारे लिए किताब रहेगी, मगर अफसोस हो किताब से हम जान नहीं पाते तो हमें समझाने वाले रहेंगे। यानी जैसे समझो कि हमने फैक्ट्री लगाई, उसमें ऐसी उम्दा मशीन है जो अमेरिका से लाई गई, अब उसे यहाँ कोई चलाना नहीं जानता, तो इंजीनियर अमेरिका से आए, बेटे को भेजा कि सही तरह ठीक कराना, गड़बड़ न हो। अगर देसी इंसान को रख दिया तो फैक्ट्री बंद करना पड़ेगी, तो वहाँ की मशीन है, वहाँ के इंजीनियर है, वहाँ की किताब है, तो दुनिया के मामले में हम सब कुछ मान लेते हैं, और आखिरत की बात आई तो हमारी मर्जी वो ईमान नहीं चलता। वहाँ का मजहब है और वहाँ की किताब है और वहाँ का समझाने वाला चाहिए। सर मजहब को समझना बड़ा आसान है, कुछ दुश्वार नहीं है, हमने उसे दुश्वार मान लिया। भाई चाय बनाना कोई बड़ा काम है? जी नहीं, हरगिज नहीं, मगर जो नहीं बनाते उनके लिए बड़ा मुश्किल काम है, और बनाते हैं तो कहते हैं बिरयानी भी यूं बन जाती है, क्या बड़ा काम है। यानी हमें करना नहीं है, इसीलिए वरना कुरान ने कुछ गलत कहा है। कुरान में सूरह बकरा में एक आयत मुबारक आपको मिलेंगी, युरीदुल्लाह ऐ मेरे बंदे, मैंने मजहब को तुझे परेशानी में डालने के लिए नहीं भेजा। मजहब की पाबंदी आसान पर आसान है, हम मुझे मुश्किल बना ले तो फिर हम जाने। पहले हर काम मुश्किल मालूम होता है, मगर प्यार और मोहब्बत से नतीजे पे निगाह रख के वो काम करे तो बड़ा आसान है। निगाह लंबी रखे, नतीजे पे जहन रखे, वो चीटी वाली बात न बनाए कि एक चीटी दूसरी चीटी से कहती है आज तो ताजमहल देखेंगे, और वो चीटी थी मगर चल गई सोच सोच पे चल गई, ताज पे आकर बैठी। दोनों बैठी, अब कहती है कि ये तो पत्थर पे पत्थर है, ये ताज है, यानी उसे कुछ दिखाई नहीं देता, जहाँ बैठी वो दायरा दिखता है उतना था। वो कहती है पत्थर पे पत्थर, उसे कौन समझाए कि सुलेमान पैगंबर होते तो कान पकड़ के नीचे लाकर तेरी बात का जवाब देते, हम तेरी बातों को नहीं समझते, मगर तू नीचे आके दूर से ताजमहल को देख। यानी निगाह दूर अंदेशी से देखे, निगाह लंबी रखे, नतीजे पे बहन होना चाहिए। दुनिया दो दिन की है तो दुनिया खाबगाह है, आखिर एक माँ ये तो नहीं चाहती है कि मेरा बच्चा 7 साल तक खुशहाल रखे रहे फिर भले आज की बस्ती में चला जाए, हम कुछ साल तो खुशहाल रहे फिर हमें जल जाए। जी नहीं, ये इंसानियत नहीं है, गलती सबसे होती है, गलती करना इंसान का काम है, कोई मलक आकर गलती करते है, मगर गलती करके उसे सुधार लेना वो इंसानियत का काम है। खुदा हमें नेक तौफीक दे कि हमारी जो जो काम हम करते वो सही है, मगर जो भूलते हैं, जो छोटी छोटी गलती है उसे अल्लाह हमें सुधारने की नेक तौफीक दे। आप जरूर पड़े मैंने कल एक सदरा छोड़ दिया था, आप ये कहेंगे कि तीन दिन से दुरूद लेकर बैठी है, आज तो दुरूद ना पढ़ूंगी, फिर जुमा को इंशाल्लाह पूरा करूंगी, मगर एक सदरा वो कहने का था कि हम आप सब विद्यार्थियों को बड़े सबने पढ़ा होगा, इमाम हुसैन के जब जरी में जाते पहले दुखल तो दुखल पड़ते हैं, तो फतेह बाग लजीज मुनाजात से ही वो फिक्रा हर दुखल में आएगा। आप कोई भी इमाम की या इमामजादे की या इमामजादी की ज्यारत में जाएंगे ना वो फिक्र आएगा। उसका मतलब है बरकत गुजार आलम हमारे फैम के बरस को खोल दे कि हमें मुनाजात की लज्जत मिले, हमें मुनाजात की लज्जत मिले। तो मैं कहना ये चाहती थी कि रूह जब ताकत पर होती है तब लज्जत मिलती है, वरना कितना भी पड़े जाओ कोई लज्जत नहीं मिलती। इंसान के पास पांच कीमती चीज है ना जिसे टेन चीज कहते हैं या उर्दू में हीस कहते हैं, पांच चीज है हमारे पास, तो वो चीजें जो चखना है, देखना है, सुनना है, छूना है, सुनना है, तो वो चीजें जेरे रूह आ जाती है। जब रूह ताकतवर हो जाती है और रूह ताकतवर तब होती है कि पाप को सहारा से इंसान रहे, खुलूस से रहे, हद पर रहे, तो उनकी रूह इतनी ताकतवर हो जाती है। तो वो खलखी बात कि बच्चों की रूहानी ताकत अजीब होती है, इसीलिए उन पर बजान असरअंदाज होती है। दीवानों ने बिचारों ने कोई गुनाह नहीं किया, इसीलिए उन पर वो असरअंदाज होती है। तो बच्चे की ये ताकत जो है आंख की, कान की, नाक की ज्यादा बढ़ जाती है। इस माने में जो गुनाह कम करे या गुनाह ही छू करे हो जाए तो इस्तिगफार कर ले, मगर गुनाह तो बाद की बात है, तहारत तो रख सकते हैं। तहारत इंसान के लिए इतना नफा बख्श है, इतना फायदा मंद है कि फिर उनकी वो पांचों हिस्स रूह के जेर आ जाती है, उनकी ताकत इतनी कमी हो जाती है, इतनी बढ़ जाती है, उसकी कोई इंतहा नहीं। उसमें से एक ही फकरा आज कहना है कि एक औरत थी, बेवा औरत थी, उनके दो बच्चे हैं, उसने बड़ी मुश्किल से उसकी परवरिश की है। ये ऐसी वैसी रवायतों का बयान नहीं है, शेख बहाई का बयान है। कहते हैं कि वो बिचारी ने ऐसी रीत से उसने परवरिश की बच्चे की कि इतना ख्याल रखा कि गस भी खुदा न खिलाई, नजिस खुदा न खिलाई, हक खिलाया, पाप खिलाया, तहारत खिलाया, अल्लाह के नाम से खिलाया, अल्लाह के नाम से बच्चों को बचपन से तरबियत दी जाए कि खाने से पहले फातिहा पढ़े, खाने से पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहे, वरना दूसरी जबान है पानी पिए तो इमाम हुसैन के कातिल पर लानत दे, फिर दुरूद पढ़े, या अपनी जहाँ सबील जहाँ पानी पीने का सरंजाम है इनके जहाँ है वहाँ एक लगा दे कि जो पानी पीने जाए उसे याद आए कि हमें लानत देना है, हमें दुरूद पढ़ना है। मगर एक लानत क्यों पानी पीते पीते 25 हो जाती है, ये जबान को चालू कर दे अंदर से, एक मरतबा यहाँ से तो कर लिया कितना सवाब है। तो ये कहती है कि इतनी ईशान से उसने उस बच्चों की परवरिश की, बहुत ख्याल रखा। अब माँ तो बेचारी दूसरों का काम करके नेचर नचर करती है, बच्चे बड़े हुए अब मजे से आके फिर फ्री घूमते हैं, मस्जिद में चले जाते हैं। हर नमाज के वक्त तो बच्चे मस्जिद में चले जाते हैं, झूठियों का बेहिशा करते हैं, ये जन्नती लोगों की झूठी, ये जन्नती लोगों की, ये जन्नती, और एक जानिब रखते हैं ये उल्टे हाथ में, ये जहन्नमी की, ये जहन्नमी की। अभी जिसे जन्नती कहे वो तो खुश होता है, जिसे जहन्नमी कहे उसका मुंह बिगड़ता है। मगर रोज रोज की बात वो नमाज ही दोहरा उठे, तुम होते कौन हो हमें जहन्नमी बनाने वाले। अब उनकी माँ के पास फरियाद आती है, माँ बिचारी डांटती है, गुस्सा करती है, बच्चे समझते नहीं है। एक मरतबा एक बड़ा शख्स आया और उनकी माँ से बड़ा बुरा कहने लगा, बुरा भला कहने लगा, कहा ये बच्चे रोज हमें जहन्नमी बनाता है, उसे घर में रखो। माँ कहती है काम करूँ, बच्चे संभालू। उसने बच्चे को पिटाई की, बच्चा रोने लगा, माँ भी रोने लगी। इतने में आलिमे दिन गुजरे, क्या बात है, कहां ये बच्चे इतनी शरारत करते हैं, रोज जन्नत जहन्नम का खेल लगाते हैं। और वो लोग नाराज होते हैं, मैं कहूँ तो क्या करूँ, आप कुछ रास्ता बताइए। अच्छा उसे मेरे पास छोड़ दे। छोड़ दिया, बच्चों को घर पे ले गए, कहा आज तुम्हें सजा है, तुम्हें खाना न मिलेगा। आधा दिन खाना न दिया, अब खाना वो मिलेगा जो मैं कहूँ। अच्छा वहां से रोटी लो, वहां से सालन, चंद घर से एक बच्चे को भेजा, टुकड़ा टुकड़ा लिया, वो चंद घर दूसरे बच्चे को भेजा, खुला आलिम दीन ने कहा है सालन दो, चावल दो, ये दो, वो दो, वो जो था वो लेके आया, अब खा लो। बच्चे ने पेट भर के खाया और बच्चे वापस आ गए। एक मरतबा अब दूसरा दिन, तीसरा दिन, सब तो ये बात भूल गए। एक दिन फिर वो औरत और वो आलिम दीन की मुलाकात हुई, कहा आपने क्या समझाया मेरे बच्चे, बहुत जो शरारत करते थे वो छोड़ दी, अब बच्चे वो खसम की कोई शरारत नहीं करते, आपका शुक्रिया। वो आलिम दीन रोने लगे, कहा तुझे नहीं मालूम बीबी, तेरे बच्चों की रूहानी ताकत अजीब थी, ये हकीकी जिसे जन्नती कहते थे वो जन्नती थे, वो जिसे जहन्नमी कहते थे वो जहन्नमी थे, हकीकत थी। एक मरतबा तेरी परवरिश शाम की थी, इसीलिए अब मैंने उसे चंद घर का क्या खाना खिलाया, उसमें सब थोड़े खून सदा करते होंगे, दस भी खाना होगा, नजीस भी होगा, तेरी तरह इतनी तहारत से भी न होगा। तो एक मरतबा मैंने एक दिन क्या खाना खिलाया तो रूह के पर्दे आ गए। तो तहारत इंसान की रूहानी ताकत बढ़ाने की चीज है, तहारत ही है कि इंसान कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। सलवाल तो मैंने कहा था ना, मुंह मीठा हो जाता है जो पूरी तहारत से रहते हैं वो देखे। एक मरतबा ये तहारत है, इस माने में अव्वल तहारत है और दूसरी नमाज। नमाज इबादत वो है, वो न करे वो मुसलमान नहीं रहता, मगर फिर भी पहले तहारत है, तहारत इतनी जरूरी है। तो खुदा रब्बे करीम से दुआ करे, पालने वाले जिस्म के साथ हमें रूह की भी ताजगी तहारत दे। ये जी तो ईमान ने कहा था ने, ईमान के आने पे हम तैयारी कर रहे हैं तो हमने साफ सुथरा घर किया के नजली से हुसैन करना है। अगर थोड़ा नजी साफ हुआ तो चलेगा, हमारे कपड़े पूरे नजी साफ है तो चलेगा, तहारत होना चाहिए, मगर पहले दिल को साफ कर ले तो इमाम खुश हो गए। दिल से हसद का कचरा निकाल दे, झूठ की आंधी निकाल दे, गुनाह के दब्बे निकाल दे, फिर देखे अच्छा दाढ़ी में कितनी लज्जत आती है, नजात में कितनी लज्जत आती है, दुरूद में मुंह मीठा होता है या नहीं, लानत में मुंह कड़वा होता है या नहीं, ये सब हमारे हाथ में है। हम अल्लाह से मांगे, हम तो गुनहगार गंदे बनते हैं, अल्लाह से मांगे इन दिनों में हमारा दिलो दिमाग भी पाक हो जाए कि बीबी हमारी अजा को कबूल करे। सलवा हम कौन होते हैं, अजाए हुसैन बिछाने वाले, शुक्र है शहजादी का जिसने शाम के दरबार में नजीसे हुसैन का ऐसा झंडा गाड़ा कि पूरी दुनिया में फैल गया। जने हुसैन शाम के दरबार से जवाब होकर उठा, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार से जवान होकर उठे थे, वो गमे हुसैन शाहजादी ने अलल ऐलान किया, शाहजादी ने हर जगह मजलिस से आम किया। हम कौन होते हैं मजलिस को बर्पा करने वाले? सबसे पहले तो जन्नत में मजलिस हुई थी, हमारी क्या ताकत है कि हम मजलिस आम कर सके? मस्जिद जन्नत में हुई थी, आदम को जब जन्नत की सैर करने की इजाजत मिली तो एक मरतबा सैर करते करते उसने एक दरख्त का पत्ता देखा जो मिस्र मीरा था, उसने अपनी शक्ल नजर आने लगी तो खुश हो गए। खुदा का हुक्म हुआ जिब्रील को, इसे ले जाओ एक कुब्बे के करीब, एक नूरानी कुब्बे के करीब लाया गया। कुब्बे में दाखिल की इजाजत मिली, दाखिल हुए, एक नूर के मिनबर पर एक मुजस्सम है, एक मुजस्समा रखा हुआ है नूरानी। कहा ये क्या है? कहा आखिर नबी की बेटी फातिमतुज़्ज़हरा का नूर है। तो सर पे जो ताज है नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाह का नूर है। गले में गुलबन है जो मौलाए कायनात का, जो गोशवारे है वो सब नूर ऐसा है, वो कहती है कि आँख फिरगी करती थी पूरी तरह, अच्छी तरह वो देख न पाते थे, मगर एक मरतबा ये दो कलर चूड़ेगी, एक गोशवारा सुर्ख है और एक सब्ज है। यहाँ बस खुदा के हुक्म से जिब्रील मस्जिद पढ़ते हैं, पूरी वाकये करबला सुनाते हैं कि वो दो शहजादों का नूर है, एक उम्मत के हाथ जहर सदा से शहीद होगा, एक उम्मत के हाथ तलवार से शहीद होगा। बस मस्जिद पढ़ने वाले जिब्रील है, रोने वाले आदम इस्लाम है। आदम और हव्वा पे इतनी दिक्कत सारी हुई, सारे मलक जमा हो गए, मस्जिद कहाँ कहाँ हुई, नूर अल इस्लाम की कश्ती तैयार हुई। कहा बस अब इजाजत है, काम खत्म हुआ? कहा नहीं, ये 5 कील लगा लो के काम खत्म होगा, मगर एक एक पर एक एक नाम लेना होगा, पहली कील पे या मोहम्मद, दूसरी कील पे या फातिमा, या अली, या हसन, 5वीं कील लगाओ तो या हुसैन। बस नूर अल इस्लाम ने ऐसे किया, मगर जा या हुसैन कहते चीज लगाई गई, खून का फवारा उबला। कहा ये खून कैसा है? कहा जबरील अमीन आए हुक में खुदा, रूह की कश्ती में सबसे पहले मजलिस हुसैन हुई। ये मजलिस हुसैन कहाँ कहाँ नहीं हुई? हम आप कौन होते हैं? शाहजादा ने हुसैन महरम का चांद में गुजार होता है, हर मोमिन के दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है, अल्लाह करे हम मजलिस हुसैन करें। जितनी भी हमारे पास जगह इतने हजार बुलाएंगे, अल्लाह करे हम मजलिस हुसैन करें। हम पंडित ने पाप की मेहमानी करें, एक वजीफा है, उसकी उम्मीद है कि हम मजलिस हुसैन करें। महरम चाहूं मुतार हुआ, कुहे की रहने वाली है, एक मरतबा जब सुना के चार हो गया, उसने बात कर ली पालने वाले, एक करीब भेज देना, मैं तो काम नहीं कर सकती अदादारों की खदमत, और आते साल तक जीने की उम्मीद भी नहीं रख सकती हूँ, बूढ़ी हूँ। जहीफा तू उम्मीद नहीं रख सकती तो कौन रख सकता है? मौत तो जवान को भी आ सकती है, दुआ तो ये है पालने वाले ऐसे करोड़ों महर्रम के लिए जिंदा रखे कि हम जन्नत में आला दर्जा बना ले, हमारा हक अदा कर ले, मगर हमारे हाथ की बात है नहीं। ज़ईफ़ा ने मगरिब अदा की, ईशा खत्म की, रो रो के दुआ करने लगी, और ज़ादारा भी वो सह जा नमाज लगती के तक्कुल बात हुआ, एक बीवी आई, कहा तुम्हें कमीज दरकार है? कहा मेरे मालिक ने इतना जल्दी सुन लिया, मेरे मौला ने मेरी दुआ कबूल कर ली, उनकी खुशी क्या कहनी। मुहर्रम के दिन गुजरने लगे, एक हवा का तेज झोंका की तरह यहाँ से आया यहाँ निकल गया। अब गुनहगार आप मलते रह जाएंगे, न पूरा मातम करने पाएंगे, न पूरा पुरसा देने पाएंगे, और मेहमान अलविदा हो जाएंगे। यहाँ भी आशूर की रात आई। ज़हीहा का कहना है कि एक मर्तबा अल-मुताज़िया ठंडे हो गए। उसने एक नया लिबास मंगाया था, वो लिबास था फाखरा। कहा, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, हर साल से ज्यादा इस साल मेरे आजाद खाने में सतार आते थे। जब फजाई खत्म होता था और जाकिर की जबानी मसाए में शुरू होता था मैं, तो तुम ऐसी नारे मार मार कर रोती थी कि सब पर रिक्कत छा जाती थी। इतने अदा में रिक्कत होती थी पहले कभी नहीं हुई। बीबी, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। बीबी, अब मेरा इनाम लो। एक मरतबा जहाँ अल-मुताज़िया ठंडा, बीबी का काम ही वो था वादारों को पानी पिलाना और वादारों की खिदमत करना। हारी होकर अल-मुताज़िया के पास बैठ के रोना, उस दिन भी रो रही थी। इनाम के वक्त मुंह को फिराया, वापस अलम जहाँ ठंडे किए थे, दादिया जहाँ ठंडा किया था, उस तरफ रुक करके कहने लगी, मेरे लाल, तेरे अवजादारों की खिदमत में तेरी माँ का आखरा लिबास पाती है। ये सुनना था, ये मर्तबा ज़हीहा चारपाई से नीचे आ गई, कदम का गोता लेने लगी। आप दो को मैंने पहचाना नहीं, आज तक मैंने पूछा नहीं, आज के पर्दे में मैंने सही तौर पे आपका चेहरा भी देखा नहीं। आप कौन हो, मैं क्या सुन रही हूँ, कहा तूने, तुम रुके रहो, अब मैंने आपसे बहुत खिदमत ली, अब आपकी खिदमत करने दो, मुझे बताओ आप हो कौन। कहा तूने किस हुसैन की मजलिस की, उस मजलूम की माँ मैं हूँ। ये कहते कहते नजरों से फिराएंगे आज मेरी शहजादी मदीना पहुंच गई होगी। बकिया से निकलकर मोहल्ले बनी आलशम में अपनी पोती सुगरा के पास होगी, हमारा यकीन है, क्योंकि सुगरा ज्यादा बेताब थी। सुगरा की तमन्ना ये थी, कनीजे जा रही है, बहने जा रही है, यहाँ तक के छोटा बच्चा साथ में है, पर मैं नहीं हूँ। अबू कनीजों की महमल न बिठा देना, अबू दवा न मांगूंगी, गर्मी है कोई बात नहीं, अबू पानी का शिकवा न करूंगा। मगर एक मरतबा इमाम ही जानते थे कि ये ना शक्ल बेटी है, उसे मैदान में नहीं ले जाना है। और दादा ने उसे, वो माँ शक्ल बेटी है, उसे दरबारे आम में, उसे बाजार शाम में कैसे ले जा रहे। मौला हुसैन ने एक दुआ की थी, पालने वाले मैं बहुत छोटा था, मेरी माँ जब रही है जन्नत हुई। अब माँ का चेहरा देखने का दिल होता है, ज़ियारत को बेतरफता है, और खुदावंद करीम ने हूबहू माँ शक्ल एक बेटी दी थी। इसीलिए मौला जनाब सुगरा को साथ में न ले गए, जनाब उम्मे सलमा को इसीलिए न ले गए कि अजवाज रसूल को मैदान में लाया नहीं जाता। एक मरतबा एक अजवाज रसूल मौला के सामने लड़ने आ गई थी, मौला कायनात उसे समझा बुझा के वापस ले गए थे। यानी अजवाज रसूल का ये एहतराम है, दुनिया ये न कहे कि तन्हा छोड़ा, उम्मुल बनीन को खिदमत के लिए छोड़ा, जनाब सुगरा को छोड़ा, बीमारी का एक बहाना था। मसीहा साथ में हो तो बीमारी की शिकायत क्या, मौला ठोकर मारे तो मुर्दे भी उठे, बीमारी की शिकायत क्या। अब सुगरा समझ गई, मैं नहीं जा सकती, सवारियां तैयार हुई। अफरा दावा में हुसैन, हम सुनते हैं कि एक अलग ऐलान हुआ कि कोई दरवाजे को न खोले, कोई चिप न आए, मतलब रसूल सवार हो रही है। हाँ, हुसैन वो पूरा पर्दे का बंदोबस्त है, हमारी है सवारी है, पर्दा है, क्या कहना कि रहबार को लाते हजरत अब्बास, बिठाते अली अकबर, नालैन खान के मौना मोहम्मद खड़े हो जाते हैं, बीबी को एक एक बिठाते हैं, तो जानू को शाहजादे कासिम, कभी शाहजादे अकबर मोड़ते हैं, उस पर कदम दे के बीबियां सवार होती है। अजीब एहतमाम था, अजीब तैयारी थी, हर एक फर्द खुश इमाम के साथ सफर करना है। मगर वफादारों सबसे आखिर में मेरी शाहजादी, शाहजादी जनाबे ज़ैनब सवार को ले आई, दौरे जनाबे मोहम्मद, नालैन अम्मी की उठा ली, शाहजादे अली अकबर ने अपना घुटना मोड़ दिया, फूफी आ जाइए, शाहजादे कासिम ने पर्दा उठा लिया, एक बाजू हजरत अब्बास ने थामा, एक बाजू इमाम हुसैन ने थामा। मेरी बहन आजा, मेरी बहन सवार हो जा, एक मंदबा मेरी शाहजादी चारों तरफ देखने लगी, इमाम हुसैन कैसा, बहन क्या चाहती हो, बहन कुछ कहना चाहती हो, हजरत अब्बास कहते खुदा भी फरवा दीजिए। और मेरी शाहजादी ने कहा, तुम सब मेरे झूठे साथी हो, तुम्हारा हाथ से मैं सवार होना नहीं चाहती, मैं मेरे सच्चे साथी को ढूंढ रही हूँ, जो जनाब ज़ैनुल आबिदीन से निजात, जिसके आंखों में आंसू की बहार होगी, हर सवारी से वो मेरे साथ होगा। एक मर्तबा मौला कायनात का गाजी बेटा, रूबरू अली शक्ल बेटा, बड़ा बेटा, क्या कहना भाई के बराबर बेटा, वो बीमार थोड़े थे, वो नागर थोड़े थे, वो हिकायत तो बाद में पढ़ूंगी कि कल से बीमार हो गए। हुसैन गाजी बेटा आगे आया, रूबरू अली शक्ल बेटा, हुसैन का बड़ा बेटा, भाई के बराबर बेटा, वो आगे आया, एक मर्तबा फूल की तरह मेरी शाहजादी को उठाकर महफिल में बैठा दी। लोगों सवारियां चलने लगी, आजादारों वो पुराना जमाना था, लोग इमाम की सबने ज्यारत नहीं की थी, सफर मुश्किल दूर थी, और लोगों को पता भी न था, इतना इमाम इतना मजहब फैला भी न था, तो लोग गुरु दर गुरु ज्यारत को आते थे, इमाम को मिलने आते थे, अपने करियर से अपने काम के लिए मदीना आते थे। तो आने वाले कहते हैं, क्या कहते हैं आने वाले, आने वाले कहते हैं लगता है ये कोई हाजियों का काफिला है। आने वाले तुम्हें ठीक पहचाना, जाते हैं हज के लिए, मगर ये जाली हज न करने देंगे, दुनिया पूरी कोने कोने से वहां जमा होगी, पर काबे का प्रदर्शन वहां से निकाला जाएगा। सरदारों ने कुछ दूसरे लोग कहते नहीं नहीं तुमने नहीं पहचाना, छोटे छोटे बच्चे साथ में है, तिजारती काफिला होगा, तूने ठीक पहचाना, पहचानने वाले ये तिजारती काफिला है। इमाम हुसैन ने ऐसी अच्छी तिजारत लगाई कि जो नाम है हुसैन ने वो भी जन्नती, हुसैन पे रोए वो भी जन्नती, हुसैन का हुक्म उठाए वो भी जन्नती, ऐसी तिजारत लगाई जो कयामत तक नाम है हुसैन ने उसे जन्नत मिलती रहे। मगर नहीं, दूसरे कहते हैं नहीं नहीं तुम समझे नहीं, ये तो बराती का अहला है, पहचानने वाले तुमने भी सही पहचाना, उसने एक नहीं दो बोले, दूल्हे का सिन भी है, दूल्हा अकबर भी है, मगर पहचानने वाले एक भी आदि नहीं नहीं सवारियां चली, जनाब सुगरात तरफ उठी, जो तनहा खाली घर अपने अजीजों से खाली घर खबर किसको नहीं दिखाए, सुगरात बर्दाश्त न हुआ, कहा वो एक मरतबा हमारे छोटे भाई को दे दो, क्या कर ले, और इमाम ने दे भी दिया, वो मासूम बहन की गोदी में इतना खुश हुआ, छोटी छोटी मुट्ठी में बहन का दामन थाम लिया, सीने से लग गया, सुगरात ऐसे भी खुश हुई भैया अद्भुत खुदा अद्भुत मासूम के सहारे मैं मेरी जिंदगी बसर करूं, मेरी तन्हाई काटूंगी, मैं हाशिम की औरतों को बुलाकर उनका दूध पिलाऊंगी, मैं बहुत अच्छी तरह उसे पालूंगी। तुम जिक्र न करो अब तुम्हें खुदा हाफिज अब भी तुम जिक्र न करो। आज का इमाम सुधरा उसे देना होगा। यहाँ माँ बाप की मोहब्बत बाप की काम नहीं आती, रुकने इमाम उठाना था। अच्छा अबू हाथ कहते हैं तो ले ले, मगर मेरी इतनी बात माने अबू तुम बच्चे ने हमारा दामन थाम लिया, बच्चा खुशी से जिसके हाथ आए वो ले ले। एक एक बीवी आई सवारी दिखाई गई बीवी उतरी, एक एक बीवी आई बच्चे को लेना चाहा, बच्चा उम्र के लायने की गोदी में लहरे के पीने से लिपट जाता था। अल्लाह ताला ने उठाया एक मरतबा मासूम को भी पता हो गया था कि ये बहन की गोद दोबारा नसीब होने वाली नहीं। अच्छा इमाम ने देखा, इमाम आगे बढ़े छुपके से छोटे मुजाहिद के काम में कुछ कह दिया, बच्चा उमर से आ गया। लो जादारो सवालिया चली जनाब शुगरा कुछ देर तो लटकी के सहारे आगे चली, गिर गई पे होश गई। पालने वाले यतीम शुगरा कवार का बचपन में कोई मैं यतीम से बनाए अपनों से न मिश्राए। आजादारो एक बार जमा मंजिल तय करता हुआ काफिला पहुंच गया करबला। असादारो नाम करबला की कशिश अजीब है, नाम लेते आंसू उबल कर आ जाता है, जीने में एक लश्कर छूट जाता है। वो करबला गया तारीख को कहती है मौला के सात रहवार बदले, एक घोड़ा में चला मौला ने बस्ती वालों से नाम पूछना शुरू किया। हाँ ज्यादा रो मौला ने पूछा कि क्या पूछा है लोगों ने बस्ती का नाम तो बताओ, लोगों ने कहा उसे कारिया कहते हैं, कहा नहीं और कुछ नाम होना चाहिए, दूसरों ने कहा उसे मारिया कहते हैं, कहा और कुछ नाम होना चाहिए, तीसरों ने कहा उसे नैनवा कहते हैं, कहा नहीं और कुछ नाम होना चाहिए, चौथों ने कहा उसे कष्ट प्राप्त कहते हैं, कहा और भी कोई नाम होगा, कहा उसे करबला कहते हैं। मौला ने अपना रोहा रोक दिया। अच्छा तारा पूछा है मौला ने कहा
Thank you. وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے نام میاں شیو کی لان کے لیے اتنی آدم ہے یہ مومن کیرت جا کے لیے نام آبا پونے کا جو ہے یہ آپ سے چڑی کپے آزم کا گوہر ہے یہ آپ سے چڑی بس یہ توفہ ہے یہ سارے کا مرتضیٰ کے لیے بس یہ توفہ ہے یہ سارے سزا کے لیے نام آبا وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے نام آبا وسیلہ ہے ہر دعا کے میں شاید ارادہ تیلی ہو میرا پی سانی جا پر تیا میرا ولی خود چنا خالی کے اکبر میں وفا کے لیے خود چنا خالی کے اکبر میں وفا کے لیے نام آبا وسیلہ کے لیے کوئی مانے یا نہ مانے ہے یہی مانی میرا نام آبا کا بخشش کل تمام میرا چشمہ پید ہے عمر کی دعا کے لیے چشمہ فیض ہے عمر کی دعا کے لیے نام آبا وسیلہ ہے ہر دعا یہ نام آبا وسیلہ کے لیے باب پیش امام کے جو بھی آئے گا جو بھی مانگے گا قسم کی وہ مل جائے گا نسخہ کیمیا ہے نا مرحل شفا کے لیے نسخہ کیمیا ہے نا کے لیے نام آبا وسیلہ ہے دعا کے لیے نام آبا وسیلہ ہے دعا کے لیے دی کرتی ہوں علم پر تو قلم روکتا ہے کرتی علم پر تو قلم روکتا ہے یاد آ جاتے غازی مجھے یوں لگتا ہے یاد آ جاتے غازی مجھے یوں لگتا ہے ربی روتا ہے یہ زینا تیری رضا کے لیے اب بھی روتا ہے یہ زینا تیری رضا کے لیے نام آبا وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے نام آبا وسیلہ کے لیے اتنی آزم ہے یہ مومن کی التجا کے لیے نام عباس الوسیلہ کے لیے شہنشاہ کائنات پاور بچانا بتلائے گی زینب
بر محمد و آل محمد صلوات. يا طاش يا طاش يا طاش يا طاش يا طاش يا طاش صادق میرے بادی اونچا ہے علم تیرا دیکھ میرے بادی اونچا ہے علم تیرا دل سینے میں جب تک پھولے بن غم تیرا دل سینے میں جب تک تیرا آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا آ جا ذرا بھی زینب بھی زیارت کو آ جا ذرا بھی زینب بھی زیارت کو جب آتے محرم کو اٹھتا ہے عالم تیرا دل سینے میں جب تک پھولے بنا غم تیرا آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے عالم تیرا پرچم کا کرنا تھا پرچم کا پہرا تھا یاد کی زینب کی زینب کی چوچوں میں آنا میرا کم تیرا دل سینے میں جب تک پھولے والا کم تیرا یاد تجھے کون سے صدمے تھے یہ ٹوٹ گئے کیسے وہ کون سے صدمے تھے یہ ٹوٹ گئے کیسے ایک درد سرنب کا اور دوسرا غم تیرا دل سینے میں جب تک ہے تابوت جب اٹھتا ہے شبیر کا ہے غازی تابوت جب اٹھتا ہے شبیر کا ہے غازی تابوت کے آگے بھی چلتا ہے عالم تیرا دل سینے میں جب تک پھولے بنا غم تیرا آ دیکھ میرے بادی اونچا ہے عالم تیرا آواز تیری سرور شبیر سے وابستہ آواز تیری سرور شبیر سے وابستہ آواز سے وابستہ عالم تیرا دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نا غم تیرا آگے کرم مانگتی ہو دعا مانگتی ہو الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہو کرم مانگتی ہو دعا مانگتی ہو الہی میں تجھ سے عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گی تجھ سے تو مانگوں گی کسے تیری ہوں میں تجھ گی دعا مانگتی ہوں کرم مانگتی ہو دعا مانگتی ہو الہی میں تجھ سے تجھے ماں پنج تن کا شادہ بگنچا دلوں کے چمن کا یہ دامن ہمارے مرادوں سے بھر دے کرم کی نظر سے دعا مانگتی کرم مانگتی ہو دعا مانگتی ہو چمکل سے ان کو تو ڈالا تتا پے جو بیمار ہے ان کو صحت عطا غریبوں پہ تو مکری آئی لائی مریضوں کی خاطر دعا مانگتی ہو کرم مانگتی دعا مانگتی ہو ہمیشہ تو مصروف رکھنا بلا سے ہم کو صدا دور رکھنا پریشانیاں ہم کو گھیری ہوئی ہے پریشانیوں کی دعا مانگتی ہو کرم مانگتی ہو تیرا سوائی نہیں تیرے در سے تیرا کوئی خالی یہی دلدائے تو میرے دکھا کے میں سب کے لیے بھی دعا مانگتی ہوں کرم مانگتی ہوں الہی میں تجھ سے دے اکیلی وعدے حق کے پیامبر دے اکیلی بطور
بولو رشادی رشاپا قسم چودہ ماہ تم کی ہے یارا میں تجھ سے دلی ہوں دعا مانگتی ہوں کرم مانگتی ہوں دعا مانگتی ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتی
English ethics and the government by talking and policy making. So let's see what this is.
I'm not. world. I can see it. I see this crystal chamber. I got it all by myself. I don't need anyone. Besides, it's a piece of the forgotten crystal island that is done.
I'm going to go to the hospital. I'm not going to be able to do that. میں نے میرے کلام کی سرنا میری کلام